नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति के बीच ईरान को ऊर्जा और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति करने का आग्रह किया है। अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशियन से बात की तथा ईरान सहित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को भारत की प्राथमिकता बताया। भारत सभी मुद्दों को संवाद और कूटनीति से हल करने के अपने रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष तेज गति से काम कर रहा है और अब तक 900 फोन कॉल और 200 ईमेल प्राप्त हुए हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में भारतीय ध्वज वाले 24 जहाज और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पूर्व में भारतीय ध्वज वाले 3 जहाज हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि सभी रिफाइनरियां अपनी 100% क्षमता से काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों से घरेलू पीएनजी कनेक्शन लेने का आग्रह किया।
नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई एंश्योर की जा रही है। भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जिनको अभी एलपीजी सप्लाई की वजह से जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन सभी उपभोक्ताओं से हमारी अपील है कि वो भी लोकल एरिया के सीजीडी नेटवर्क से बात करें और पीएनजी कनेक्शन लें।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि औसतन मासिक वाणिज्यिक एलपीजी आवश्यकता का 20% आवंटन कारोबारियों को आज से शुरू हो गया है। होटलों और रेस्तराओं के लिए अतिरिक्त आपूर्ति से जुड़े उपाय किए जा रहे हैं। सरकार पेट्रोलियम और पर्यटन मंत्रालयों तथा उद्योग जगत के संबंधित पक्षों के साथ समन्वय कर स्थिति पर नजर रख रही है और इसका समाधान निकाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बोडो प्रादेशिक परिषद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है और इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। असम के गुवाहाटी में वर्चुअल माध्यम से एक जनसभा में श्री मोदी ने ये बात कही।
कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है।
खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री का कोकराझार दौरा रद्द कर दिया गया है। श्री मोदी ने बोडो क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। लोकसभा ने आज वर्ष 2025-26 के लिए पूरक अनुदानों को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत सरकार ने 2,81,000 करोड़ रूपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मांग की थी। अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मुख्य रूप से उर्वरक, खाद्य सब्सिडी और रक्षा सेवाओं पर बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए मांगी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि पूरक अनुदान में 61 मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने समग्र व्यापक आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। इससे देश राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते से भटके बिना आर्थिक झटकों को झेलने में सक्षम हुआ है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि भारत ने ईरान को धमकी दी है और भारतीय नौसेना पश्चिम एशियाई देश के खिलाफ समुद्र में प्रवेश कर चुकी है। तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को फर्जी बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने महिला विद्यार्थियों और कर्मियों के लिए मासिक धर्म अवकाश संबंधी राष्ट्रव्यापी नीति की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस तरह से कोई भी उन्हें नौकरियां नहीं देगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस तरह के प्रावधान जानबूझकर महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव से जुड़ी पहले की धारणाओं को और मजबूत करेगा। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में थारून मनेपल्ली ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। थारून ने जस्टिन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।